और रस आस्वादन वहाँ होता है, वो रस है। यहाँ पर ये विकृत होकर के अशुभ बन जाता है, हानिकारक होता है इस जगत में। यद्यपि ये कहा गया नर तनु भजनेर मूल, ये मनुष्य शरीर भजन का मूल है, इस बात में सार्थकता है यदि उपयोग किया जाए अच्छी तरह से, शुद्ध रूप से साधन भक्ति का अनुशीलन करें, तत्व को ग्रहण करें, तत्व तो ठीक है। और नहीं, अभी देख रहे हैं हम धर्म का ध्वजा उठाए हुए लोगों में परस्पर वाद विवाद बिटंडा, एकमति नहीं हो रही, ये सब का कारण क्या? यही सब कारण है। प्रपंच में मनुष्य जाति जितनी भी सृष्टियां हुई हैं उन सब में सर्वोत्तम है, यह बात ठीक है। क्यों? इसको साधु संग होता है, विचार शक्ति भी है, दूसरे के अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण भी कर सकता है, किंतु दूसरों के कुविचारों को भी तो ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, किंतु बुरा या अच्छा अपने स्वतंत्रता के ऊपर में निर्भर है। यदि स्वतंत्र का सदुपयोग किया तो मनुष्य जन्म सार्थक है, और नहीं तो देखते हैं नर पिशाच जैसे, नर पशु जैसे व्यवहार होता है। आजकल अधिकांश ऐसा ही है, सदुपयोग हम नहीं करते, विचार भी नहीं करते, इसलिए आश्रय वैकुंठ के परिकर जो हैं वो हमारे मूल आश्रयणीय हैं, वो आश्रय उनका किया जाए, भागवत का आश्रय लिया जाए, शुद्ध ग्रंथों का आश्रय लिया जाए, शुद्ध जिनमें प्रेम है उनका आश्रय लिया जाए, तब तो ये उपयोगी होगा मनुष्य शरीर। आज इसके विपरीत यदि हम इसका दुर्व्यवहार करते हैं, ये सांसारिक चीजें आएंगी और जीवन को बर्बाद कर देंगी। भगवान के मनुष्य रूप के अतिरिक्त भी मनुष्य को छोड़ करके मत्स्य कुर्म बराह हंस निसिंह हय शीर्ष हय ग्रीव, हय ग्रीव माने घोड़े, बराह इत्यादि बहुत से रूप हैं। ये क्यों है? जीवों के स्वरूप वृत्ति के उन्मेष के लिए प्रभु ने ऐसे रूपों को धारण किया। अत्यंत बुद्धि रहित, विचार रहित, मनुष्यत्व रहित मत्स्य कुर्म इत्यादि हैं, उन लोगों के लिए वो अवतार लेकर और तब उनको उन्नत करेंगे। वनमानुष लोगों के लिए परशुराम जी, शुद्ध मर्यादा युक्त पुरुषों के लिए रामचंद्र जी का जीवन, प्रेमी व्यक्तियों के लिए कृष्ण का जीवन चाहिए, तो बलदेव जी का, ऐसे ये जीवों के स्तर बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हैं। इसलिए नहीं कि पहले मछली से आरंभ करके ये सृष्टि आरंभ हुई, मछली से फिर कुर्म, कुर्म से फिर सुअर, सुअर से फिर बंदर और बंदर से मनुष्य हुआ, इसलिए नहीं, प्रारंभ में ये सब सृष्टि है। किंतु प्रभु जी ने समस्त के रूप में जो नियम उन्होंने जन्म ग्रहण किया है उन लोगों के उद्धार करने के लिए, इस लीला में लीला वैचित्र की उपयोगिता के विचार से मनुष्य देह में जो कृष्ण ने स्वयं अवतीर्ण होकर के जो लीलाएं की हैं वो मनुष्य के अनुरूप है, किंतु लोग समझ नहीं पाते है अनुरूप। यहां तक कि मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति भी, विधि विधान में रहने वाले व्यक्ति भी इसको समझ नहीं पाते। जैसे कृष्ण का चीरहरण झूठ बोलना और सब जो चीज़ें हैं ये उन लोगों के समझ में नहीं आती। इसलिए कृष्णचंद्र जी इस जगत में लीला प्रपंच में कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन अवतीर्ण होकर के सर्वोत्तम मानवों के लिए जो सेव्य वस्तु हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ये उत्साह देने के लिए, लोभ देने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं कृष्णा। भजन की पराकाष्ठा, भजने वस्तु की सेवानुभूति को सुनकर स्वरूप के उन्मेष होने में बहुत सहायता, माने भगवान की ये जो लीलाएं होती हैं इन लीलाओं को देख करके, समझ करके, भक्तों का चरित्र सुन करके, उनको उपदेश को सुनने पर हमारा स्वरूप क्या है इसको उन्मेष करने में अर्थात इनको समझने में बहुत कुछ सहायता मिलती है। इसीलिए भगवान की लीलाएं होती हैं। जीवों के स्वरूप का उन्मेष क्रमशः होता है। उन्मेष माने क्या? एकदम हम शरीर को, जड़ को मैं मानता हूँ, फिर मन की तरफ में चले, फिर आत्मा की तरफ में जाएं, क्रमशः हम आत्मा हैं, फिर कृष्णदास हैं, कौन से कृष्णदास हैं, ये क्रमशः उपलब्धि होगा। कृष्ण ने जगत में प्रकट होकर के जिन जिन लीलाओं का प्रकाश किया है, जिनको रुचि है भागवत की कथाओं में वो तो उसको ग्रहण कर लेंगे, अरुचि नहीं है वो ग्रहण नहीं, विद्या के बल पर, पांडित्य के बल पर, मेधा और तर्क के बल पर उनको नहीं समझा जाए। यदि आदमी शरणागत हो जाए और भागवत की सेवा करे, भागवतों की सेवा करे, भागवतों माने वैष्णवों की, दोनों की, जहाँ शरणागत है जो मैं कुछ नहीं जानता, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, वो तो अंतर्यामी है, शक्ति संपन्न है, वो झट इस चीज़ का बोध करा दें, और अपने मन से हम समझने जाएंगे ये कभी नहीं होगा। इसलिए रुचि लाभ करने की सुविधा के लिए, रुचि को उत्पन्न कराने के लिए भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि लीलाओं के बदले फिर रामलीला का अवतरण कराया, प्रकाश कराया, रामलीला के रूप में अवतरण, और फिर राम आदि जो नर्वत लीलाएं हुई उसमें मर्यादा के कट्टर फॉलो करने वाले थे, इसमें रस की कोई चमत्कारिता न होने से कुछ नर लीला में बाकी रह गया, इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए कृष्ण के रूप में आए। प्राकृत बुद्धि विशिष्ट प्रभुपाद की लेखनी में एक चीज है, अनर्थों को दूर कराने की तरफ में इनकी विशेष चेष्टा रहती है। अनर्थ युक्त अवस्था में ही रस समझने की चेष्टा करें, इसके लिए वो हाथों में खड़ग लेकर के रहते हैं प्रस्तुत, इसलिए इस बात का खंडन किया है। प्राकृत बुद्धि विशिष्ट, जड़ बुद्धि विशिष्ट सहजिया अप्राकृत सहज धर्म को नहीं समझ पाते, ये लिख रहे हैं भवेत है ना, भवेत क्रिया सुत्वा तत्परो भवेत, तत्परो भवेत, और एक और है तत्परत्वेन निर्मलम, इस पर यह बतला रहे हैं। यह तत्पर कौन होगा? रुचि जिसको है वो तत्पर होगा, और नहीं तो जड़ बुद्धि लेकर के और भगवान की लीला कथाओं को समझने जाएंगे तो वही मोह और आसक्ति ये इत्यादि चीज़ें हमारे हृदय में आएंगी, वो सब चीज़ें नहीं समझ सकते, कृष्ण को अपने समान समझने लग जाएंगे, या कृष्ण को भी हमारे जैसे मनुष्य थे और हमारी जैसे ही उनकी चेष्टाएं थी। यदि राधा कृष्ण की निभृत लीलाओं को स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान में चित्त लग जाता है, यहाँ तक तो ठीक है, और यदि भगवान की गोपियों के साथ लीला को सुन करके जड़ीय भाव उत्पन्न होकर के काम की तरंगे उठती हैं तो क्या समझो, बंद करो मत छुओ, और नहीं तो उसी की उद्दीपना होगी, है अप्राकृत, किंतु इस जगत में जड़ धर्म जड़ काल और ये सब जड़ मोह इत्यादि रहने के कारण हम उस पर आरोप कर लेते हैं, इसलिए यदि कई पढ़ने के साथ साथ में उसकी गंध भी आ जाए थोड़ी सी भी, तो समझो जब भी अनर्थ हमारे अंदर में अधिक है, अभी रुचि नहीं आई। और यदि उन लीलाओं के स्मरण करने से चित्त पवित्र हो जाता है और उसमें निविष्ट हो जाता है, समझो हम ठीक साधन से चल रहे हैं, यह रुचि का लक्षण है। और नहीं तो सहजियाओं का जैसा होता है व्यभिचार, उसमें अनिवार्य हो जाता है व्यभिचार का आना, इसके द्वारा विशुद्ध सत्व में गोलोक की विचित्रता नहीं समझी जाती। गोलोक में संपूर्ण रूप से शुद्ध लीलाएं हैं, गोलोक वृंदावन इस जगत में हमारी अभी वासना बुझने की शक्ति ये सब जड़ी है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए, इसलिए अपक्व अवस्था में समझने से यही व्यभिचार जरूर आएगा, काम क्रोध लोभ मद मोह जरूर आएगा, जितना भी इसको कोई चेक करने की चेष्टा करे वो जरूर आना ही, इसलिए इसको दूर करके साधक भजन करना चाहिए। मलिन चित्त में इंद्रियों की जो सेवा करने वाले हैं वो अधिपतित हो जाते हैं, अधपतन उनका हो जाता है। शंकर की जब ब्रह्मा की जब ये अवस्था है दिखलाया तो साधारण जीवों की क्या बात, इसलिए ऐसी रुचि होना भी सहज नहीं, लोभ होना सहज नहीं, लोभ होगा तो क्या होगा, कहाँ पहुंचेगा, निष्ठा के बाद ऊपर चला गया, लोभ होना माने एक तरह से रुचि से ऊपर आसक्ति हो गई, इसलिए रागानुगा भक्ति आसक्ति से आरंभ होती है, अनर्थ काफी दूर हो जाता है। एक आदमी मान लिया कि जैसे यहां पर बहुत दिनों से है, 40 वर्षों से है, फिर इसे विरक्त होकर के घर क्यों चला जाता है, या संसार में प्रविष्ट होकर के मरता क्यों है, क्यों छोड़ नहीं सका उन काल के विषय को, आसक्ति को मोह को छोड़ नहीं पाया, क्रमशः उन्नत होना चाहिए तो उन्नत नहीं हो पाता, ये सब बाधाएं इसमें हैं, इसलिए बाधाओं को भी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए साथ साथ में, और इधर में विचार कर करके शुद्ध रूप से हरिनाम, शुद्ध रूप से हरि कथा सुनना, अशुद्ध रूप से सेवा करना, इस तरह से करना चाहिए। इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी ने वो उपदेशामृत में पहले दूसरे तीसरे श्लोकों की अवतारणा की, बाको वेद बाचो वेद का मनुष्य क्रोध बेगम जिह्वा उदरोपास्थ वेद, किसके लिए, हम साधकों के लिए, इसे दूर रहना चाहिए। प्राकृत साहजिक लोग जो हैं सहजिया इसको समझ नहीं पाते, वो स्त्री को पुरुष है तो स्त्री बना लेंगे, स्त्री का कपड़ा पहनेंगे, स्त्री का श्रृंगार कर लेंगे और कहेंगे जो मैं सखी हूँ, ये प्राकृत चीज है, सहजियागिरी है। अभी हम जिस अवस्था में हैं अभी भाई उसी अवस्था में रह करके साधन भजन करो, जब अप्राकृत भाव हृदय में उदित होगा तब इस विषय में कुछ आगे चलेगा। लोभ सचमुच में हो इसलिए भगवान की भक्ति कोई सांसारिक वस्तु नहीं है, विशेष करके यह लोभ होना सहज नहीं है। परमपंच में उतरने वाली जो कृष्ण की लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, विशेष करके मैया के साथ में झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने कहाँ मट्टी खाई, मैंने चपक चोरी की, सवेरे से ही तो हमको मधुबन में भेज दिया और वहाँ से शाम होकर के गैयों को लेकर के आया, भूखा प्यासा में सो गया, मैंने कब मक्खन चोरी। विशेष करके पाश्चात्य देशों में आधुनिक पढ़े लिखे लोग, जड़ बुद्धि संपन्न लोग इसकी मीमांसा नहीं कर पाते, यहीं पर भी नहीं कर पाते। इसलिए जोगमाया के द्वारा प्रकटित विशुद्ध सत्य में जो कृष्ण की रास आदि जो लीलाएं हैं, इस लीला को देखने वाले समझने वाले जगत में बिरले लोग हैं, बहुत बिरले लोग हैं। सहजिया संप्रदाय कृष्ण को के लीला को नश्वर भोग के अंतर्गत समझते हैं, अपना भोग। हम लोग उस चीज को इस रूप में ना ग्रहण करें, मान लिया कि एक आदमी 10-20 वर्षों से 25 वर्षों से 40 वर्ष से भजन कर रहा है, अब क्या कारण है कि उसको छोड़ करके फिर विवाह इत्यादि में प्रवेश करे, फिर संसार में प्रवेश करे, नौकरी में फिर लग जाए, ऐसा मतलब क्या? भक्ति को उसने कभी भी धारण नहीं किया, समझा नहीं, भक्ति को एक साधारण लौकिक वृत्ति समझा। भागवत में कह दिया है ना, और सब जगह आज जिह्वा के चलने से ही हरिनाम हो जाता है, स्पंदन मात्रे न कीर्तनम भवत, बस हो गया, न छोड़ने की जरूरत है, न कोई आफत है, न कोई यह है, बस एक बार नाम कर दिया बस हो गया। एक कृष्ण नाम करने वाला कनिष्ठ अधिकारी, निरंतर कृष्ण नाम करने वाला, हम कहते हैं निरंतर भगवान नाम करने वाला भी कनिष्ठ से भी गया बीता हो सकता है, हो सकता है। नहीं तो ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोग भी ऊपर से चित होकर के नीचे चले जाते हैं। इसलिए हरिनाम करते 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 ये सब चीजें दूर हो जाएं तब समझो जहां, और लोभ उत्पन्न हो जाएगा तब वो विपत्त में मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। ये प्रभुपाद जी का विचार है। तत्परतेन निर्मलम, तत्पर होने से निर्मल होगा, उसमें काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये सांसारिक वासनाएं रहेंगी, ये तो कभी संभव पर नहीं है। साबुन लगाने से मैल रह जाएगा, और जो रहता है तो समझो जो घटिया किस्म का ये साबुन है, ये मैल दूर नहीं करता। आजकल तरह तरह से ये सब कंपनियां ऐसा करती हैं, रद्दी चीज को भी अच्छा चीज बना करके देती हैं, ऐसे ही इस जगत में भी है। इसलिए तत्परेण निर्मलम जरूर होगा, सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोखजे अहेतुक अव्यवहिता जा आत्मा संप्रसिद्ध, आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा प्रसन्न क्यों नहीं होती? हरि हरि का भजन करते करते नाम करते करते चित्त और विषाक्त होगा कि निर्मल होगा? काम क्रोध और बढ़ेगा ना और कम होगा? यही तो विचार है। भगवान का नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चित्त और निर्मल होता जाएगा। ये सब विचार करना चाहिए अपने भजन में। यदि यही नहीं विचार करते हैं और सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत का चतुर्थ अध्याय, रस निर्जास आस्वादन करने के लिए जगत में आते हैं, तो रस के बदले में हो जाएगा भोग का रस आस्वादन कर रहे हैं निर्जास। ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। भजन का तो ये आनुषंगिक या गौण फल भी तो है ना, चित्त निर्मल होता जाएगा और तब भगवान के प्रति तत्परत्वर होने से और निर्मल होकर के तब इस चीज को समझेंगे कृष्ण लीलाओं को। इसलिए तत्परत्वेन निर्मलम और तत्परो भवेत पद का कुछ लोग कदर्थ करते हैं, अन्य अर्थ कर लेते हैं विकृत अर्थ करके। अप्राकृत तत्व में प्राकृत का की अवर्चना फेंकते हैं, माने क्या है अप्राकृत चीज किंतु प्राकृत विचार का आरोप करते हैं। भजन करने से अप्राकृत वस्तु का चित्त निर्मल नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा या और खराब हो जाएगा, संसार में प्रवेश करने की प्रवृत्ति आएगी, न कि सुखदेव गोस्वामी के साथ समान, नारद जी के साथ समान अथवा व्यास जी के समान, उसका चित्त और भगवान की तरफ में लगेगा और दयालु होता जाएगा कि और निष्ठुर होगा। सब उसमें गुण भगवान के जो हैं वो सब तो संचरित होंगे जीव के हृदय में, न कि और विरोधी होता जाएगा। इसलिए हम लोगों को विचार करके चलना चाहिए, सुधार करने की बहुत अभी गुंजाइश है। इसलिए अप्राकृत तत्व में प्राकृत की का गंदा कीचड़ मत फेंको, तादृशी कीड़ा, तादृशी कीड़ा है ना, कैसी तादृशी कीड़ा, शब्द का अर्थ भ्रम में इंद्रिय तर्पण में नियुक्त है। भजते तादृशी क्रीड़ा, भजते माने स्मरण करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में और उनका मन निर्मल हो जाता है, ये करना चाहिए, साधक क्रमशः करेगा किंतु हृदय में निर्मलता आएगी। इसलिए तादृशी कारण अप्राकृत जो कृष्ण की जो अप्राकृत लीलाएं हैं उनका तत्पर होने से हमारा चित्त भी तो अप्राकृत होता जाएगा, इस पर लक्ष्य रखना चाहिए, दूषित न होने पाए। किंतु प्रकृत प्रस्ताव में अप्राकृत जो रति है वही तादृश शब्द का तात्पर्य, भजते तादृशी कीड़ा, भजते तादृशी अप्राकृत रति जो कृष्ण के नित्य परिकरों में रागात्मिक जनों में जो प्रीति है वैसा प्रीति करने की चेष्टा करो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। अस्पराशम स्त्री को भी प्रत्याग करो, इंद्र के समान ऐश्वर्य को भी धूलि के समान समझ करके सदा के लिए प्रत्याग। पांडव लोग सब प्रकार के वैभव में रहते हुए भी सब समय कृष्ण की ही चिंता करते हैं, युद्ध इत्यादि आरंभ करते हैं, जुआ में अपना सर्वस्व दांव पर जानबूझ करके हार जाते हैं, जीत गए हैं तो अभी दुर्योधन ने कहा जब आप लोग हार गए मैं जीत गया, अच्छा ठीक है आप जीत गए, ऐसा क्यों, कृष्ण आएंगे नहीं तो आएंगे ही नहीं, इसलिए ऐसा क्यों। द्रौपदी को भला कोई मनुष्य हार सकता है, जो मनुष्य हार गया खुद ही वो दूसरों को भी दांव पर रखने का उसका अधिकार है, उसको तो अधिकार नहीं, किंतु ये सब किस लिए किया, जानबूझ करके किया, उनको ऐसे बुलाने से आएंगे नहीं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे, इसलिए ऐसे उपाय रच करके उनको बुलाया। इनको समझेगा कौन, पांडव लोग जुआ खेलते थे, पांडव लोग स्त्री को हार गए, पांडव लोग धन के लिए लड़े, ऐसा नहीं। इसलिए वही जो अप्राकृत जो रति है उसके प्रति किसी को यदि लोभ है तो गोपियों का जैसा चरित्र होगा, सीतामा सुबल के समान होगा, नंद बाबा जसोदा जैसा प्रेम होगा, अपने लिए कभी चिंता ही नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी हम भजन करते हैं, पाठ कर रहा हूं, मैं सोचूं ऐसा पाठ करूंगा सब लोगों का मन मुग्ध कर दूंगा और सब लोग कहेंगे वाह 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 वा, अद्भुत पाठक है, तो ये पाठ करने का फल किस पर आया, हमारे ऊपर, कृष्ण के लिए, लोगों का चित्त कृष्ण की तरफ में मैं नहीं ले जा सका, किस पर लाया, ये अपराध एक तरह से है। इसलिए ये सब चीजों को छोड़ना चाहिए, कीर्तन कर रहा हूं वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कीर्तन, ऐसा कीर्तन तो हमने जीवन में सुना ही नहीं, और उसको अपना हृदय दे दिया किसी ने, फिर क्या होगा? बहुत लोगों कीर्तनिया लोगों को भी ऐसा देखा है, वो बम्बई में स्कूल में भर्ती हैं, उन्होंने एक लड़की दे दिया, उसके साथ में शादी कर लिया और बस हो गया, सिर पर हाथ रख दिया ऐसे, और फिर एक एक रोटी के लिए भीख मांगते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो यही प्रेम का और भक्ति का और ये कीर्तन का फल है ना, भगवान के प्रति प्रेम। अविद्या विमुख, अविद्याग्रस्त हरि विमुख जीव अपराकृत कीड़ा परिहार करके, छोड़ करके अक्षज ज्ञाने जड़ भोग में उन्मत्त हो जाता है। वो तो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाता, बस अपने आप उसमें रम जाता है। जितना पैसा अब आएगा अपने भोग में लगाने लगता है, भगवान के लिए, गुरु वैष्णव के लिए नहीं। अरे देखो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भजन किया, सनातन गोस्वामी के पास में आया ना, वो क्या स्पर्श मणि धूल में फेंक दिया, याद नहीं। यदि वो चीज चाहते हो तो फेंको इस मणि को, मणि को फेंकवा दिया और कान में कृष्ण नाम दिया। कृष्ण के प्रति रुचि हो, और नहीं तो कहेंगे जैसे हमने 40 वर्ष तक भजन किया, मठ में सब किया और सब बेकार गया। अभी मुझको अभी एक चिट्ठी अभी प्राप्त हुई एटा से, किसी ने लिखा है, मठ में तो वही सांसारिक बातें ही, बहुत दिन हमने सेवा की, देखा सुना वहाँ पर भजन किया, तिलक माला भी लिया, किंतु देखा जो वहीं पर जैसा हम संसार में हैं उससे भी अधिक वहाँ पर भी माया, वहाँ पर भी हमारे घर ही जैसा सभी कुछ, तो उसे अच्छा है कि हम अपने घर में रह करके क्यों नहीं भजन करें, क्योंकि वही चित्त लेकर के यहाँ आए, वही देखा, ये सब चीजें उनको दिखाई नहीं पड़ी। अपराकृत विधिलिंग जो लिखा है भवेत, माने जरूर करना चाहिए, नहीं तो प्रत्यवाय होगा, दोष होगा। कोई रुचि लभ्य, रुचि के द्वारा प्राप्त जो रागानुगा भजन पथ है, इसके लिए कहते हैं कोई अधिकार की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सुनने से ही हो जाएगा वो लीला कथा अरास इत्यादि, बिना अधिकार के नहीं। रुचि हो तो, रुचि होने से श्रद्धा उसमें प्रतिष्ठा आएगी, उस श्रद्धा के अनुसार में यदि कोई सुने तब तो ठीक है, और नहीं तो मत सुने, सभी लोग सुनेंगे ऐसा नहीं, यदि सुनेंगे तो जो बुरी बातों में अनर्थ में है उनका अनर्थ बढ़ जाएगा, शेख जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए और मूल शाखा शब्द हैया बढ़ी दे ना पाए। यदि अनर्थ रहेगा उन कथाओं को सुनेंगे तो क्या होगा, वैसे सूर ताल लय मान और विचारों को ले लेंगे ऊपर ऊपरी, और समाज में ही प्रचार करें, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, और ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा बढ़ करके अंत में हमको डुबा देगी, भक्ति नहीं होगी, भक्ति स्थगित रह जाएगी। आ रहा समझ में? यही कथाएं सुन करके भागवत की जब लोग समाज में कहेंगे वो लोग खूब आदर देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ करेंगे, सम्मान करेंगे, और स्वर के साथ में ये कथाएं यदि हों, मधुर स्वर के साथ में तो और भी, किंतु वो बढ़ेगा क्या, आत्मसम्मान बढ़ेगा, सांसारिक भावना बढ़ेगी, भोग की लालसा आएगी और न जाने क्या होगा। इसलिए ऐसा नहीं समझ लो, प्रपंच में कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार है, यहाँ पर साधकों को कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इस पर विचार होना चाहिए। गोलोक वृंदावन में वैसा कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं है, क्यों, वहाँ पर रुचि प्रधान अनुराग है, जो कुछ होता है अनुराग के द्वारा वो सब चलता है, और इस जगत में अच्छे बुरे का कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसका विचार है इसमें गोलोक वृंदावन में। ऐसा विधि नहीं हो सकती, बैकुंठ में कुछ है, गोलोक में भी है, वृंदावन सब अति ये विधि विधाओं से और ऐसे सब चीजों से सर्वथा ऊपर, जो कुछ होता है वो सब प्रेम की तरंगे होती हैं और अपराकृत प्रेम की तरंगे होती हैं। यदि कोई जीवात्मा यदि कोई प्रभुपाद जी फिर कहते हैं किंतु इन विचारों को सुन करके यदि कोई व्यक्ति जीवात्माओं की नित्य और अवश्य सेवा इस जगत में जो अवतरण किया है जो उतरी है जो कृष्ण जी ले आए हैं जो परम श्रेष्ठ मधुर भाव है इसके प्रति यदि कोई उदासीन हो कोई साधक तो क्या होगा इसे निश्चय ही भगवत सेवा को छोड़ करके जैवलम पट्ट में अधिपतित हो जाएगा। दोनों बातें कह रहे हैं एक ही बात करके समाप्त नहीं हो गए इस पर विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यह जरूर कर्तव्य है क्या मधुर रस की सेवा के प्रति उदासीन न हो उसके लिए साधन भजन श्रवण कीर्तन होना चाहिए किंतु उस रूप में नहीं शुद्ध रूप में होना चाहिए। रुचि जिसकी है रुचि युक्त आदर के साथ में इन कथाओं का नित्य श्रवण कीर्तन इत्यादि करें किंतु उसे भोग की प्रवृत्ति न बढ़े। इसलिए जो लोग भोग के प्रवृत्ति वाले हैं उनको भागवत पाठ करने के लिए मना किया गया। क्यों भागवत पाठ करने से रुपये पैसे ग्रहण करने की भोग की लिप्सा बढ़ती है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है क्या है श्लोक भागवत का यदि कोई अनुशीलन करे और ये सब प्रवृत्तियां नष्ट नहीं हो रही तो उसे क्या होगा जागतिक ये सब चीजें बढ़ जाएगी अहंकार बढ़ जाएगा। उनको ये श्लोक याद नहीं आया। इसलिए शुद्ध रूप में भागवत सुनना चाहिए और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अब देखने हम देखते हैं कि वृंदावन में मथुरा में जगत में अधिकांश पैसे लेने के लिए व्यवसाय के रूप में भागवत का पाठ करते हैं। एक व्यवसाय हो गया है पैसा रोजगार करके ख्याति प्राप्त करके संसारी कामों में उन चीजों को लगाएंगे। भक्ति हमको बढ़े शुद्ध रूप में भक्ति करो। हमने तो देखा है ये भागवत पर PhD किया बहुत अच्छे वक्त हैं सुंदर सुकांत हैं युवक हैं बड़े सुंदर भी हैं बहुत सुंदर हिंदी भी बोल लेते हैं भागवत के विचारों को भी बोलते हैं किंतु कौन देवी चंडी चंडी जो जर्जर हैं चामुंडा ने कंकाली देवी की उपासना भागवत पढ़ करके भागवत का आराध्य कंकाली है जब पूछा जाए तो कहेंगे ये जोगमाया है उन्हीं से लिए इनकी कर तो जोगमाया के पति कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करता या जिनकी छाया ये है वो श्रीमती राधिका और कृष्ण क्या भजन क्यों नहीं करता वो नहीं करेंगे। मधुर रस इसमें इस पर देखो और विचार करो मधुर रस रति में तत्पर नहीं होने से जीव का मधुर रति के विपरीत जड़ भोग बात प्रबल होगा। यदि इसमें नहीं होगा तो यदि इसके प्रति रुचि नहीं हुई भगवान ने इसको इसीलिए प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं स्त्री का नाम नहीं सुनते उनके सामने काठ की मूर्ति भी स्त्री की नहीं आती यदि छू दिया किसी स्त्री को तो समुद्र में कूद जाते हैं मरने के लिए। कोई एक लड़की गीत गोविंद का पद गा रही और महाप्रभु के कानों में गया और वो उन्मत्त हो गए दौड़े बड़े जोर से उनकी चादर गिर गई कपड़े कांटों में उलझ गए फट गए शरीर में भी कांटे लग गए और इतने वेग से दौड़ रहे हैं जो गोविंद उनको पकड़ नहीं सके। जब एकदम वो लड़की सामने आ गई अब पकड़ छुनाई चाहते हैं छुना किस लिए आज तुमने हमको हमारे कानों में कैसा अमृत ढाल दिया आज हमारा जीवन तुमने धन्य कर दिया मैं तुम्हें क्या दूं ये कहने के लिए एकदम अब छुने तब गोविंद ने दौड़ करके वहीं से जोर से चिल्लाए अरे वो लड़की है दस बार चिल्लाया तो उनके कान में पड़ा लड़की शब्द। बस इधर देख, गोविंद तूने आज मेरे प्राण की रक्षा की, नहीं मैं समुद्र में कूद जाता। किंतु ये महाप्रभु जी क्या चिंतन करके इतने उतावले हो रहे हैं, क्या क्या स्मरण कर रहे हैं? राधा कृष्ण की, गोपियों की, नंद यशोदा का कृष्ण के साथ में व्यवहार, ये सब प्रेममयी अनुरागमयी चीजों का, लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा सा विक्षेप न पड़ जाए, सुखदेव गोस्वामी को देखिए, उनको भानी नहीं है कि स्त्री बैठी है कि लकड़ी है कि क्या है, कोई भानी नहीं। ये रूप गोस्वामी को, रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के देखो विशेष कैसे उदासीन रह करके दिन रात उसमें लौट। हाँ एक बात देखना है, हम नकल नहीं करेंगे, अपने अधिकानुसार में धीरे धीरे चलेंगे, वैसे ही भजन करने की चेष्टा। और नकल करके हम वही सुखदेव गोस्वामी सनातन गोस्वामी हो गए और फेंक दो ये सब हो गए। इसलिए अपने अधिकार के अनुरूप में चल करके साधन भजन करते हुए इन चीजों को समझ करके भजन करना पड़ता है। इस प्रकार से वात्सल्य रस की सेवा कर रहे हैं, उसमें भी अपनी भोग की कामना न हो, कृष्ण को छोटा सा बच्चा समझ करके, हे कृष्ण हमको ये धन दे दो, हमारा ये दे दो, संसारिक चीजें उसमें, तो वात्सल्य रस नहीं बल्कि वो भोग रस है। इस प्रकार से कृष्ण को एकमात्र प्राकृत बंधुवत सदबंधु की भांति, ये भी कह रहे हैं लौकिक सदबंधु की भांति नहीं करने से जीवों का कल्याण नहीं है। लौकिक बंधु हमें नीचे में ढकेलेंगे, राजा मोरे प्रीति करे हे मोर बंधु, स्त्री मुझे बड़ी प्यारी है, हमारे लिए प्राण दे देती है, यही मोर बंधन। संसार के लोग हमें प्रीति करते हैं किस लिए, और वही चीज थोड़ी सी जिसके लिए प्रीति करते हैं वो थोड़ा सा ना हो। एक अभी हमारी क्रिकेट की टीम लंका में गई ना, और वहां से कोई शील्ड ले आई, लाइन कतार लग गई लोगों का देखने के लिए, और पुष्प वर्षा और माला उनके गले में ना आए। और वही जब पाकिस्तान गई हार करके आई तो जूतों का माला से डाल दिया, कैसा एक मिनट में, यही जगत की रीति है। इसलिए कृष्ण को लौकिक संत बंधु मत जान करके प्रीति जगत को देने के लिए, लोभ देने के लिए भगवान की ये सब लीला, महाप्रभु की लीला कहो और कृष्ण की लीला, ये इसमें सार चीजें हैं। ये यदि आ गई तो खूब पढ़ो लिखो भजन करो ऐसे, और इन लोगों का सुनो, और नहीं तो सावधान सावधानी से, नहीं तो सेवा भी छूट जाएगा। मूल चीज यही है, ये गौण चीज है, सेवा गौण चीज है, नहीं अभी सेवा ही मुख्य है, भजन अभी गौण है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव की कथा सुनना, अर्चन, रसोई, अभी हम लोगों के लिए यही मुख्य चीज है, ये समझो। और आएगा तब इसके प्रभाव से उनके प्रति थोड़ा सा आदर आएगा, श्रद्धा आएगी, लोभ आएगा, उस समय में विचार होगा, जो जो जिस अवस्था में है उसके अनुसार में कर्तव्य अकर्तव्य का यहाँ पर विचार है। अभी ऐसा मत सोचो जे हम केवल हरि नाम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक है मत करो, भोजन भी मत करो और सोओ भी मत करो, कोई हर्ज नहीं, करो तो ऐसा, तो वो तो उपदेश पूरा लेंगे नहीं। इसलिए अर्ध कुकुटी न्याय वो सब ग्रहण, इसलिए अभी वैष्णव की सेवा को प्रधान समझो, वैष्णव सेवा छाड़िया निस्तार पीछे करा, इसको भी विचार रखो, दिन रात सेवा करो, सेवा से सुकृति होगी, सुकृति से हृदय में श्रद्धा आएगी, श्रद्धा ही बीज है भक्ति लता का, ये क्रम से बढ़ता जाएगा, और इसका विपरीत करेंगे सब चौपट। इसलिए भगवान की सेवा को यहाँ पर कोई भी चीज को, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है ये गौण है ये मुख्य, अभी मत विचार करो, वो अपने आप कृष्ण के भजन में तन्मयता आएगी, अपने आप वो ऐसा होना चाहिए। इसलिए कृष्ण सेवा के प्रति उदासीन मत हो, यह भजन का फल नहीं है, कृष्ण की सेवा में उदासीन हो जाए। इस प्रकार से भगवत मुक्ता उपस्थित होने पर जीव समझता है कि मैं भजन में प्रवीण हो गया, इसलिए सब वैष्णव की सेवा, कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा अब कोई जरूरत नहीं है, ऊपर पहुंच गया, सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं, फेंक दो। इसलिए कहते हैं कृष्ण सेवा के प्रति उदासीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। भोग पर इंद्रिय से भी नश्वर देह भृत्य वृत्ति करते 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 स्वरूप में विभ्रांत, ऐसे लोग विभ्रांत होकर के स्वरूप से च्युत हो, एक तो स्वरूप है ही नहीं, भक्ति से भी च्युत हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण में निरपेक्ष बुद्धि नहीं होने से जीव कृष्ण के विमुख होकर के क्रमशः संसार में रसातल में मिलता जाएगा, और इन विचारों को लेकर के ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करके क्रमशः भगवान के भजन में तत्पर हो तब फिर उसकी आत्मा निर्मल होगी, और तब फिर वो भवित क्रिया की सार्थकता है। आज यहीं तक। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रसादमभूतस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विकेतव गणे गणनं विधेहि अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुटरोचि संवदत तं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने तं सर्वभूतहृदयं मानतु स्म त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया इति विज्ञाय राधे तन्मयमाम् प्रचंड चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। आज श्रोताओं में बहुत से भाषा के जानने वाले लोग हैं, आसाम भाषा के बोलने वाले, आसामी भाषा ये लोग, और इसमें कोई बंगला भाषी हैं और कोई हिंदी जानने वाले के, बहुत से भाषाओं को जानने वाले। यदि केवल हिंदी में बोलता हूँ तो बंगाली वाले या आसामी वाले नहीं समझ सके, और यदि मैं बंगला में बोलूँ तो हिंदी वालों को समझने में कुछ असुविधा।
आपकी बंगला भाषा
प्रथमें आपनारा जारा যাত্রী হিসাবে এখানে এসেছেন, হমনে কল বতলাযা থা কি কৃষ্ণ কি সমস্ত লীলাও মে চার প্রকার কি লীলাও কা সমাবেশ হ্যায়। दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से और मधुर रस से। इसलिए कि उस लीला को गोलोक
ब्रज से उतारा, यहाँ पर लीला करेंगे तो लोगों को लोभ होगा इसको देख कर, इसलिए इस कथा को सुन करके लीला को अवतरित होने से भागवत इत्यादि ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है उसको सुन करके पाने का लोभ हृदय में होगा और तब वो शुद्धा भक्ति में प्रवेश करेगा। शुद्धा भक्ति माने हो चाहे राग के अनुगत होकर के या राग से प्रेम से जो भगवान का भजन किया जाए तो इसमें वो प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि वो जो लीला लेकर के आते हैं उस समस्त लीलाओं में मधुर रस सबसे श्रेष्ठ बतला गया, गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसको जान समझ करके ये क्या चीज है, वैष्णव के मुख से भागवत सुने या ग्रंथ सुने और उसके अनुसरण करें तो सबसे श्रेष्ठ उनका जो भाव है, कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो गोपियां हैं। उस गोपियों के प्रेम को जगत में दिखलाने के लिए उस लीला के साथ में वृंदावन के 84 कोष में अवतरण किया। ब्रज के अतिरिक्त यह लीला कहीं भी विश्व में या कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर भी वैकुंठ इत्यादि में यह लीला का प्रचार नहीं, गोलोक तक में नहीं है। गोलोक के अंतिम प्रकोष्ठ अंतरतम प्रकोष्ठ ब्रज में ये लीलाएं हैं। वह लीला स्वकीय और परकीय से दो प्रकार की। स्वकीय लीला किसको कहते हैं, स्वकीय और परकीय।